समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल भी होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार अलका। आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस संडे एडिशन ऑफ आज सवेरे। एंड यस, टुडे द मंथ ऑफ रमजान इज आल्सो स्टार्टिंग, सो वी आर विशिंग ऑल आवर लिसनर्स हु ऑब्जर्विंग दिस फास्ट फॉर द नेक्स्ट वन मंथ अ ब्लेस्ड रमजान। और अगर एक थोड़ा सा ट्रिविया लोगों को बता दें, क्योंकि बड़ा सा जिनको नहीं पता क्यूरियोसिटी होती है, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है दैट यू नो ऑल द पीपल फास्ट एंड दे एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट द फास्ट इज नॉट लिमिटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अलोन। इट मीन्स आपकी जबान का भी रोजा होता है कि आप झूठ ना बोलें, आप किसी की बुराई ना करें, आपकी आंखों का रोजा होता है कि आप कुछ गलत चीज देखें ना। तो इट्स अ कंप्लीट होलिस्टिक यू कैन से वे यू हैव टू पे अटेंशन टू ईच सेंस ऑफ योर्स, ईच सेंसेस का भी रोजा होता है।
बिल्कुल सारा, वैसे ही जैसे व्रत और उपवास जो होता है, वो लोग बहुत ज्यादा इसको इसमें अंतर नहीं कर पाते। जैसे उपवास का मतलब होता है हम थोड़ा अलग बैठ जाते हैं, जब थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं हम, तो हर चीज को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर हुआ जाए तो जो मन की मलिनता है, मन का जो मैल है, वो सब धुल जाता है।
यस, द फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान हैज बिगन अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम टुडे एंड द वर्शिपर्स दे थ्रोंग्ड द मस्जिद्स एंड द मॉस्क्स लास्ट नाइट टू ऑफर द स्पेशल नाइट प्रेयर्स दैट आर कॉल्ड तरावी एंड दे विल कंटिन्यू थ्रू आउट द मंथ। इट इज द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एंड एट द एंड ऑफ द मंथ ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द साइटिंग ऑफ द क्रेसेंट। And in Gulf countries, Alka, Ramzan kal se shuru ho gaya tha. It's the second day of holy month of Ramzan over there. And many Muslims fast during these days and do not eat or drink, as I said, anything between sunrise and sunset. And those who observe the fast, they are advised to break the fast by eating dates. Aur uska bhi koi main maqsad yahi hai ki dates apne aap mein hemoglobin itna zyada liye hote hain that after the fast, when you break it, so you break it with a healthy thing. और इट्स एन अपील टू ऑल द लिसनर्स कि भले ही पूरे दिन आप रोजा अगर जो लोग ऑब्जर्व कर रहे रखे हैं, बट आफ्टर यू ब्रेक द फास्ट जब आप रोजा खोलें तो अनहेल्दी मील्स मत लें। हम लोग का दिल चाहता है कुछ चटर पटर पकौड़ी के बिना तो लगता है रोजा खोल ही नहीं सकता, बट ट्राई टू यू नो गो फॉर मोर हेल्दी ऑप्शंस बिकॉज ऑफ कोर्स योर हेल्थ मैटर्स द मोस्ट। एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टुडेज शो अलका विद द हेडलाइंस।
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर कल शाम जामनगर पहुंचे। वे अगले 2 दिनों के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी आज पशु राहत और पुनर्वास केंद्र वन तारा जाएंगे। इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे और सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे। श्री मोदी सासन जाएंगे और सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कल गिर नेशनल पार्क में सवारी करेंगे और सासन गिर में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बोर्ड वन्य जीव और वनों संरक्षणों और विकास के संवर्धन के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
India's gross goods and services tax or GST collections jumped 9.1% in the month of February to 1.84 lakh crore rupees in comparison to the same month last year. February marks the 12th consecutive month of over 1.7 lakh crore rupees of collections. As per the data, mop up from central GST stood at 35,200 crore rupees, state GST at 43,704 crore rupees, integrated GST at 90,870 crore rupees, and compensation cess of 13,868 crore rupees.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन की यात्रा पर केरल और तेलंगाना जाएंगे। इस दौरान वे तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित 4th पी रामेश्वरम स्मारक व्याख्यानमाला में व्याख्यान देंगे। उपराष्ट्रपति तेलंगाना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। इस बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और शमशाबाद क्षेत्र पर ड्रोन, पैराग्लाइडर और माइक्रोलाइट विमान सहित हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
In order to curb air pollution levels in the national capital, the Delhi government has decided that vehicles which are more than 15 years old will not get fuel at petrol pumps after 31st of March. Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa announced several anti-pollution measures after holding a meeting with officials on the issue of air pollution. Talking to the media after the meeting, Mr. Sirsa said that the government is installing gadgets at petrol pumps which will identify vehicles older than 15 years. The minister also announced that a team would be formed to identify such vehicles and bar their entry and exit into the city. He added that the Delhi government will make it mandatory that Delhi airport, multi-story structures and other big offices must install anti-smog guns to control pollution at their places.
जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं, 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके, इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी।
संयुक्त अरब अमीरात के समाचार पत्रों ने महाकुंभ मेला 2025 की सराहना की है। इसकी वैश्विक अपील, भव्य आयोजन और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक में संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों की भागीदारी पर प्रकाश डाला है। गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, गल्फ टुडे और द नेशनल जैसे प्रकाशनों ने आयोजन की सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक महत्व और यहां उपयोग किए गए प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने इसके सुचारू रूप से समापन को सुनिश्चित किया। और सायरा, ये वाकई में जिन्होंने भी देखा और जो वहां गए, जिन्होंने उसकी अनुभूति की और इतना बड़ा जो श्रद्धालुओं की जो एक तरह से भीड़ कहिए,
करोड़ों लोग
जो गए और जो नहीं गए वो सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं गए, लेकिन वाकई में मैं भी गई थी वहां पे। और वो जो आप उसकी जो अनुभूतियां लेकर के लौटते हैं तो ये लगता है कि आप तन लेकर के तो लौट आते हैं लेकिन आपका मन वहीं रह जाता है।
बहुत Moving on, the first phase of Gaza ceasefire between Israel and Hamas ended yesterday, with uncertainty surrounding the second phase. After rejecting Israel's proposal to extend the first phase ceasefire, Hamas said that no talks are taking place for the second phase. With this, Israel's delegation that went to Egypt for ceasefire talks returned from Cairo without any concrete development taking place. Hamas has said that it would not agree to any extension of phase one without guarantees from American, Qatari and Egyptian mediators that phase two would eventually take place.
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। इस मैच की विजेता मंगलवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। हारने वाली टीम का बुधवार को दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा। इस बीच कल रात कराची में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बी के शीर्ष पर पहुंच गया है।
In tennis, India's Yuki Bhambri and his partner Alexei Popirin of Australia clinched the doubles title at the Dubai Tennis Championships. The unseeded Indian-Australian duo defeated the second-seeded pair of Harry Heliovaara of Finland and Great Britain's Henry Patton in the men's doubles summit clash 3-6, 7-6, 10-8 in Dubai last night. This was India's first ATP title of the season. Meanwhile, it marked Yuki's fourth career ATP doubles title and his first ever triumph in an ATP 500 tournament.
News Magazine program आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं सायरा।
Yes, Alka, let's start with news from Chennai. A purebred Asiatic lion, two Asiatic lionesses and a wild Indian female donkey will be added to the Ariknar Anna Zoological Park in Vandalur from Gujarat's Sakarbagh Zoo. This marks the return of the Asiatic lions to the zoo after more than a decade. Efforts to secure these animals have been going on for 2 years as purebred Asiatic lions are in high demand among zoos nationwide. The zoo is also acquiring a wild female donkey to pair with its existing male. In exchange, Vandalur Zoo will give Sakarbagh Zoo an Indian gaur, a pair of white tigers, a mouse deer, wheat, peafowl and yellow anacondas. The Central Zoo Authority of India is reviewing the arrangement with final approval expected by early March. Another news coming in from Chennai, the trial run between Poonamalli CMRL depot and Porur metro station is likely to begin in the third week of this month. As a precursor, a road-cum-rail vehicle, which is deployed to electrify the tracks, was operated from Poonamalli to Mulaithottam. CMRL Director T. Archunan, along with other chief general managers, chief project managers and contractors, inspected the track on a motor trolley from Poonamalli depot to Mulaithottam station. The valedictory function of the 3rd Naval Helicopter Flying Instructors course was held at INS Rajali Arakkonam on 28th of February, marking the graduation of two naval helicopter pilots as qualified flying instructors. Commodore Kapil Mehta, commanding officer INS Rajali, awarded the prestigious qualified flying instructors badges to Lieutenant Commander Nikhil Ahir and Lieutenant Commander Manu Maheshwari. The 22-week training program includes ground and flying instructions with regular assessments of ability of the pilots to impart instructions. The program emphasizes a seamless integration of theoretical knowledge with practical skills, equipping pilots to deliver effective training both on the ground and in the air. Moving on to Bengaluru, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot has called for a collective effort with policy initiatives to drive social and economic change. He was speaking while chairing the 52nd Annual General Body Meeting of the Institute for Social and Economic Change in Bengaluru. He acknowledged the contribution of the institute in formulating policies for Dalit upliftment for the government of Karnataka. He pointed out that the institute has contributed significantly through research reports on education, health, women's empowerment, economic reforms, climate change, governance, and social harmony. He applauded the institute for its systematic studies on resource potential, development challenges, poverty alleviation, and inclusive growth. He informed that the members of the institute have served in various government capacities, including the Planning Commission, the State Finance Commission, and the Karnataka Valuation Authority. And this was the news I had from the southern cities. So what is the news that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
बिल्कुल, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल मदर्स ऑन व्हील्स यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न पारिवारिक व्यवस्था को समझना और उनके सामाजिक कल्याण पर प्रभाव को गहराई से जानना है। मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लेने वाली सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी। सायरा, इस तरह की जो मदर्स ऑन व्हील्स की जो बात है और ये जो इतने देशों में जाएंगी और अपने जो पारिवारिक मूल्य हैं और वहां पे क्या कैसे हैं, इन सबको जब समझेंगी, जानेंगी और फिर जब वो चीजें हमारे पास आती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास बहुत अच्छी हैं और बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो बाहर में बहुत अच्छी हैं, तो इन सबका जो तालमेल, बिल्कुल, और सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि परिवार जो है वो जुड़ा रहे, संयुक्त रहे और वो टूटे ना। और दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि वो इस महीने से अपने सभी कर्मचारियों का वेतन मोबाइल ऐप अटेंडेंस के आधार पर तैयार करेगा। निगम ने बताया कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता और समयबद्धता में सुधार लाना है। एमसीडी ने कहा कि कर्मचारियों को एमसीडी स्मार्ट मोबाइल ऐप पर दर्ज की गई उपस्थिति के अनुसार वेतन मिलेगा और जो कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे उन्हें केवल उन्हीं दिनों के लिए वेतन मिलेगा जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जनता की सुगमता के लिए उत्तर पूर्वी जिले के सभी थानों में जन सुनवाई का आयोजन किया कल। पुलिस के अनुसार इस मौके पर उच्च अधिकारियों द्वारा जिले के सभी थानों में जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया गया। पुलिस ने बताया कि जिले के सभी थानों में कुल 185 शिकायतें मिली जिनमें से 125 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और बाकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बात कर लें महाराष्ट्र की, मुंबई की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिशन ओलंपिक के लिए कल पुलिस विभाग के एथलीटों को ओलंपिक सहित शीर्ष स्तर के टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करने के उनके प्रयास में सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। ठाणे में 35वें महाराष्ट्र पुलिस खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 2036 में इस आयोजन की मेजबानी के लिए भारत की तैयारियों में पुलिस टीमों को एकीकृत करने के लिए इस दृष्टिकोण के अनुरूप मिशन ओलंपिक शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल टीम भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि यह पुलिस कर्मियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर है और आश्वासन दिया कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी कि हमारे पुलिस एथलीट ओलंपिक सहित उच्चतम स्तरों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कल पुणे में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम समूचे महाराष्ट्र में 35 जिला स्तरीय और 355 तालुका स्तरीय स्कूलों में आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के लड़के और लड़कियों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान की जा रही है। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक छात्र के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार करके इस पहल को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। बात कर ले कोलकाता की तो कोलकाता में कल ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव की 190वीं जयंती मनाई गई। बेलूर मठ में विभिन्न विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंगल आरती, पूजा, वैदिक मंत्रोच्चार भी किया गया। इस अवसर का हिस्सा बनने के लिए अनुयायी बेलूर मठ और रामकृष्ण मठ एवं मिशन के अन्य शाखाओं में भी एकत्रित हुए और रमजान माह का पहला दिन भी आज से आरंभ हो रहा है वहां भी। आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और सायरा के साथ और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो दिल्ली की बात करें तो सायरा सुबह की तो ठंड है ही, बच के रहने वाली ठंड है ये। और आज का अधिकतम तापमान अगर देखें तो 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
और पिछले दो दिन में जो बारिश हुई उससे तो थोड़ा सा एकदम से बदलाव सा मौसम में आ गया।
बिल्कुल, ये वही ठंड कह रही है कि वो बार बार वो है ना कि मुड़ मुड़ के देख रही है वो हमें। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं जॉय सिटी कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और बाकी का हाल आप बताएं।
Well, Chennai is expected to have mist in the morning and partly cloudy sky later. Minimum temperature was 26 degrees Celsius. Maximum will be around 34 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a mainly clear sky, which will become partly cloudy towards the afternoon or evening. The minimum temperature in Bengaluru was 18 degrees Celsius and maximum is expected to be around 32 degrees Celsius. While Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze, and in Hyderabad the temperature will hover between a minimum of 20 and a maximum of 34 degrees Celsius.
बिल्कुल, और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज है 2 मार्च।
Yes, on this day in the year 1984, the Mother Teresa University was inaugurated by Mother Teresa herself at Kodaikanal in Tamil Nadu.
बिल्कुल, और पहले चलते हैं 100 साल पहले। तो 1819 में अमेरिका ने अपना पहला आव्रजन कानून पारित किया था। 1836 में टेक्सास ने मैक्सिको से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1866 में नीडल कंपनी एक्सेलसियर ने सिलाई मशीन की सुई बनानी शुरू की थी। सोच लीजिए इतनी छोटी सी सुई और कितना बढ़िया काम करती है।
yes, और कहते हैं ना कुछ चीजें जो इनोवेशन की हुई दुनिया में, आई मीन द मोस्ट रेवोल्यूशनरी वाज ऑफ कोर्स द व्हील, बट इवन जैसे आपने कहा ना छोटी सी चीज है सुई, लेकिन अगर आप तस्वीर करें उसके बिना आपकी कितनी जिंदगी मुश्किल हो सकती है।
बिल्कुल, और देखिये कैंची और सुई का बड़ा अच्छा रिश्ता है। कैंची काटती है, वही सुई जो है वो सिल देती है। बिल्कुल, और 1901 में दुनिया की पहली वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी हवाई में खुली थी। और 1970 में जिम्बाब्वे एक स्वतंत्र गणराज्य बना था। और 1982 में बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया था।
Also on this day in the year 1997, Bangalore's Dr. B.V. Ravi Kumar developed India's first indigenously made HIV detection kit. On this day in 1930, Gandhiji addressed a letter to Viceroy intimating his intention to break the salt law if the Congress demands were not conceded. And of course, aur bhi aapke paas events hai.
1983 में सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। वहीं 2006 में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था।
And now if you remember some of the people who either have their birth or death anniversaries, today we are remembering Surya Narayan Vyas. And if you're thinking, who is he? Well, he was an Indian astrologer from Ujjain. And if you're thinking ki ek astrologer ki hum log kyun baat kar rahe hain, kyunki in astrologer ne badi khas tareekhein muqarrar ki thi. Wo kisi ki shaadi ki nahi thi, lekin hamari azadi ki thi. Yes, hamari yani hamare Hindustan ki azadi. And in fact 14th August also was probably give the date given by him for the date of Pakistan's Independence Day, and 15th August for India's independence. He is reported to have prophesied several other incidents, such as the deaths of Lal Bahadur Shastri and Sardar Patel, and the emergence of India as a global power in the 21st century. He was a member of the advisory board to the government of Madhya Pradesh during the tenure of Govind Narayan Singh from the years 1967 to 69. The government of India awarded him the third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1958 for his contributions to astrology. India Post issued a commemorative stamp on Vyas in the year 2002.
बिल्कुल, और आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवित्री और देश के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सरोजनी नायडू को, जिनकी आज पुण्यतिथि है.
Friend, I come to you from many thousand miles away as the ambassador of a very ancient country to the youngest nation in the world. It may surprise you that a country which you are taught to regard as conservative should have chosen a woman to be its representative and ambassador. But if you read aright the whole history of Indian civilization, you will realize that woman has been the very pivot of its culture, of its all its inspiration, and of all the embassies of peace that have gone abroad for many centuries to the uttermost parts of the world.
And that was Sarojini Naidu's voice herself. Bilkul. And unki awaaz sunke hi pata lag gaya hoga ki why is she called the Nightingale of India?
Bharat Kokila.
Yes, absolutely. And today she passed away while she was the governor of Uttar Pradesh. She also holds a place of pride among the women freedom fighters of India. She presided over the Kanpur session of International Congress and took active part in the Salt Satyagraha and represented Indian women in the Round Table Conference of London.
बिल्कुल, और उनके साथ ही उनसे शक्ति, साहस और ऊर्जा भी पाते थे, और युवा शक्ति को उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी. और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची, और 1895 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई. पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी लिखती रहीं, और गोल्डन थ्रेशहोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था. उनके दूसरे और तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया था.
यस, एंड पब्लिश्ड इन 1912 In the Bazaars of Hyderabad remains one of her most popular poems. So today we remember Sarojini Naidu. Another name on our list is of Lawrence Wilfred Baker, or Laurie Baker as we know him. Today is his birth anniversary. Though he was a British born but Indian architect, because he made India his home, and he is renowned for his initiatives in cost-effective, energy-efficient architecture and designs that maximized space, ventilation and light, and maintained an uncluttered yet striking aesthetic sensibility. He was influenced by Mahatma Gandhi and his own experiences in the remote Himalayas. He promoted the revival of regional building practices and use of local materials, and combined this with a design philosophy that emphasized a responsible and prudent use of resources and energy. He was a pioneer of sustainable architecture as well as organic architecture, incorporating in his designs even in the late 60s concepts such as rainwater harvesting. Aaj log apne designs mein rainwater harvesting ki baat karte hain, but imagine in the 60s he was doing that.
Doordarshi the.
Yes, and he was minimizing the usage of energy inefficient building materials, minimizing damage to the building site, and seamlessly merging with the surroundings. Due to his social and humanitarian efforts to bring architecture and design to the common man, his honest use of materials, his belief in simplicity in design and in life, and his staunch Quaker belief in non-violence, he has been called the Gandhi of architecture.
बिल्कुल, आज ही पुण्यतिथि है बलदेव शरण नारंग की. श्याम चौरासी घराने की श्रृंखला से जुड़े सुप्रसिद्ध शास्त्रीय वादक और संगीतकार थे ये, और संगीत जगत में बलदेव शरण एक बेजोड़ नाम है, जिन्हें उस्ताद बी एस नारंग के नाम से भी जाना जाता है. और आज हम याद कर रहे हैं देश के पूर्व हॉकी खिलाड़ी सैयद अली को। वो पुरुषों की उस हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने सन 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था।
यस एंड आई टेक प्राइड बिकॉज ही बिलोंग्स टू माय सिटी। इनफैक्ट ही इज द फादर ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग के क्लास में भी बड़े चर्चे होते थे उनके फादर के एंड द अचीवमेंट्स दैट ही प्रोबब्ली हैड।
बिल्कुल। और आज जन्मदिन है तीरंदाज जयंत तालुकदार का, जिन्होंने वर्ष 2006 में विश्व के नंबर एक तीरंदाज होने का कीर्तिमान स्थापित किया था। वर्ष 2006 में ही अर्जुन पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुए थे और इनका जन्म आज ही के दिन 1986 को गुवाहाटी में हुआ था। और उन्होंने टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर में तीरंदाजी की ट्रेनिंग प्राप्त की। वहीं पर उन्होंने अपने कोचों को अपने शारीरिक सौष्ठव और सही निशानेबाजी की कुशलता से प्रभावित कर दिया था।
And we are remembering Gulshan Rai today on his birth anniversary, a film producer and distributor of yesteryears. In fact, he produced successful films in the 70s and 80s, mostly directed by Vijay Anand, Yash Chopra and Subhash Ghai, and thereafter also directed by his son Rajiv Rai. And in the 70s, his Yash Chopra directed films made Amitabh Bachchan a superstar and launched successful careers for script writers Saleem Javed. The notable films were Deewar and Trishul.
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है।
और इनकी मुख्य फिल्मों की जो बात आपने की उसमें जॉनी मेरा नाम है, दीवार है, त्रिशूल है, त्रिदेव है, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त, बहुत सारे सुपर डुपर हिट इन्होंने।
एब्सोल्युटली, आपने सुपर डुपर हिट की बात की, सो वेल जस्ट टू गिव आवर लिसनर्स कि उनकी कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, एक आइडिया मिलेगा, बिकॉज ही रिलीज्ड मोर देन 180 फिल्म्स इन बॉम्बे।
बिल्कुल।
40 ऑफ विच हैव सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबलीज। तो आपको याद होगा वो वन स्क्रीन वाला दौर जब सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली,
पहला शो, पहला दिन,
तो सिल्वर जुबली एक बहुत बड़ी बात होती थी। एंड 40 फिल्म्स, दैट्स क्वाइट अ फीट। एंड यू हैव ऑलरेडी नेम्ड सम ऑफ द फिल्म्स। एंड इन द 80s ही प्रोड्यूस्ड दिलीप कुमार स्टारर विधाता, विच वाज डायरेक्टेड बाय सुभाष घई। एंड लेटर ही प्रोड्यूस्ड फिल्म्स इन द एक्शन जॉनर डायरेक्टेड बाय सन राजीव राय। और क्यों ना आपने विश्वात्मा का जिक्र किया, तो उसका एक गाना सुना जाए। गाना सुनते ही जो है अपने आप ही जो कदम थिरकने लगते हैं।
बिल्कुल सही कहा।
तो गुलशन राय की फिल्मों में जो गाने एंड साउंड ट्रैक थे वो बड़े अहम होते थे। एंड ही मोस्टली एक्चुअली गॉट हिज सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय कल्याण जी, आनंद जी एंड लेटर बाय विजू शाह। और जब आनंद जी की बात की है तो आप उनका जिक्र करने जा रही हैं।
आज ही उनका जन्मदिन है और आनंद जी वीरजी शाह का जन्म 2 मार्च 1933 को हुआ था।
उठ गए जो कदम आ गए, आ गए, आ गए पास हम, आ गए पास हम।
और इस जोड़ी ने 1970 के दशक में हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक, विशेष रूप से मारधाड़ पर आधारित फिल्में जो थी उसमें काम के लिए भी ये जाने जाते हैं। और इस जोड़ी ने कुछ बेहतरीन फिल्मों में जैसे डॉन, बैराग, सरस्वती चंद्र, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, धर्मात्मा, त्रिदेव, सफर में अपना संगीत दिया।
एंड इन द ईयर 1975 ही वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर कोरा कागज।
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
और सायरा घड़ी की सुनिया कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें, तो अलका सिंह और सायरा को अनुमति दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।